हे माँ तेरी जय हो। अब हम लोग प्रवेश करते हैं, लेकिन उसी भूमि से अब एक अन्य भूमि पर आते हैं। दो बातें तो स्पष्ट हो जाती हैं, एक प्रकार का पूर्व कथन समझ लीजिए। एक तो ये कि यह योग समग्र योग है, इंटीग्रल योग है, पूर्ण योग है। तो पूर्ण योग से दो बातें आती हैं, एक तो हम सब आधे अधूरे हैं। इसको जानने के लिए कोई हमको किसी के कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खुद को अगर हम देखें तो ये पता चल जाता है आधे अधूरे हैं। एक सत्य है जीवन का, और यह भी सत्य है कि हम सब पूरे होना चाहते हैं। लेकिन आमतौर पर हम कैसे पूरा होना चाहते हैं? हम बाहर से वस्तुओं को लेकर के पूरा होना चाहते हैं। हम सतत आनंद नहीं अनुभव करते, तो हमको लगता है कि अगर हम बाहर से यह भी ले लें वो भी ले लें तो हम आनंद प्राप्त कर लेंगे। फिर कमरा तो छोटा है, कितनी चीजें एकोमोडेट होंगी? कुछ समय के बाद समस्या शुरू हो जाती है, तो फिर और विस्तार, घर बड़ा हो। यानी बाहर से हम प्रयास करते हैं, सत, शुद्ध सत, अनंत सत। कैसे हम अब वहां पर ये जो वृत्ति आती है, ये भी मेरा, वो व्यक्ति भी, अनेकों सत्ताएं सब मेरी हो जाएं। अहंकार वैसे ही पकड़ता है, ज्ञान में पकड़ता है, वो पूर्णता खोज रहा है, इन्फिनिट ट्रुथ को ही खोज रहा है, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस को, पूर्ण ज्ञान को खोज रहा है, पूर्ण शक्ति को खोज रहा है, इन्फिनिट पावर फोर्स, इन्फिनिट आनंद। ये चार एस्पेक्ट्स हैं जो सत्य के, जहां से ट्रुथ के, उसमें ये चारों आप देखेंगे एस्पेक्ट्स इन्फिनिट के, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण, ये श्री अरविंद बताते हैं कि ये फोर एस्पेक्ट्स के ढूंढ हम इसी को रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं हैं, और उनकी प्यास हमारे अंदर लगी हुई है। और इसी कारण अभी मैं ये नदी देख रहा था, तो अब इसको क्या कहा जाए, सूखी नदी या प्यासी नदी? कुछ कहेंगे सूखी नदी, कुछ कहेंगे प्यासी नदी। सूखी नदी जजमेंट पास हो गया उसकी डेस्टिनी के ऊपर, और प्यासी नदी एक भविष्य की ओर द्वार खोलता है। तो जब हम स्वयं को, अब ये एक ह्यूमन चेतना को, कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम नहीं बदल सकते, हम नहीं सुधर सकते, जैसे हैं हम वैसे ही हैं, तो ये एक सूखी नदी की तरह है कि कोई होप नहीं है हमारी चेंज होने की। और जब हम ये कहते हैं कि नहीं, हम पूर्णता की ओर संभव है और पूर्णता की दिशा में हम जाना चाहते हैं, तो प्यासी नदी हो जाती है। तो प्यासी नदी का अगर हम इसको मानव रूप में लें, तो प्यास ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। योग का प्रारंभ ही प्यास से होता है, माने लिटरली ये शब्द यूज किया है, थर्स्ट। दो ही चीजें आवश्यक हैं, उन्होंने कहा है इस योग के लिए, थर्स्ट थर्स्ट थर्स्ट। वो प्यास सीमित होगी तो सीमित चीज मिलेगी, कोका कोला की होगी तो प्यास थोड़ी बुझाएगी। और प्यास जितनी बड़ी होगी, इसको कहा ना अभिप्सा का रूप दिया है, उतना अधिक हम प्रगति करेंगे। हम कहीं भी रह लें, स्वयं श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी में रह लें, अगर प्यास नहीं है, अभिप्सा नहीं है, तो वहां भी यही तेरा मेरा, वो ऐसा है ये वैसा है, यही करते रहेंगे। बिना प्यास के योग नहीं है। भगवान क्यों प्यास की प्रतीक्षा कर देते हैं, भर क्यों नहीं देते? तो यदि बिना प्यास के चीजें भर दी जाएंगी तो उनका मूल्य रहेगा? अब देखिए, माताजी श्री अरविंद ने आकर अपना सब कुछ दे दिया। ये पहला एक देखने को आता है अवतार, या एक चीज जो सीखने को मिलती है मदर श्री अरविंद से, द वन डिवाइन मैनिफेस्टेशन वेयर दे गेव एंड गेव एंड गेव। आश्रम पूरा का पूरा मां की ज्वेलरी बेच करके, शिष्यों की इनर नीड से लेकर के ऊपर की नीड तक। और अगर हम शेरविंद के केवल जीवन को देखें, रात को बैठ करके पत्र लिख रहे हैं, ये बुक्स लिख रहे हैं जो आज किताबों के नाम से हैं, क्यों कर रहे थे? उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने सारे अनुभव कर लिए थे। वो बैठे रहते शांतम आनंदम, वो किसके लिए कर रहे थे? हम लोगों के लिए। मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों को पता भी नहीं है कि बुक्स के केवल नाम कौन कौन से, मेजर वर्क्स, फॉरगेट कलेक्टेड वर्क्स, नाम भी नहीं पता है। पर वो दे रहे थे, उनको पता था कि मनुष्य तैयार नहीं है, पर ही वॉज गिविंग। आंखों की ज्योति श्री अरविंद की इस प्रयास में चली गई कि हम सबको एक नई ज्योति दें। उन पुस्तकों को अपने घर में रखने मात्र से उसमें से एक अद्भुत एक संबल मिलता है। मैंने तो अनुभव किया है, कई लोगों ने अनुभव किया है, और पढ़े तो ना जाने कितना आनंद हो। तो लोग कहते हैं कि समझ नहीं आती। हाँ, ठीक बात है, स्वाभाविक है, समझ नहीं आती। लेकिन उसका कारण एक है, पूर्व धारणाएं, पूर्वाग्रह। हम हर चीज को जब समझने की चेष्टा करते हैं तो कोई चीज जिसको हम जानते हैं उसके आधार पर समझने की चेष्टा करते हैं। ये पूर्वाग्रह समझने में बाधित होते हैं। इसके कई उदाहरण ले लें। आपको मान लीजिए जीवन में कोई व्यक्ति मिला, उससे आपको कुछ पीड़ा हुई या उसने आपको दुख दिया। दुख दिया तो कोई नहीं देता है, लेकिन आपको दुख पहुंचा। अब आप ब्रांड कर देते हो, है ना, समूह को ब्रांड कर देते हो। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि भाई नहीं, हमको इसमें नहीं जाना, क्यों, हमारा हार्ट ब्रेक हो गया। तो लड़के होते ही ऐसे हैं, होता होगा। लेकिन ये जो हमारे अंदर हर चीज को हम, जबकि हर चीज हर क्षण देखा जाए तो एक नवीन संभावना लेके आता है। माता जी कहती हैं, एवरी डे देर आर मेनी मोमेंट्स व्हेन विंडोज ओपन ऑन द इन्फिनिट। अनंतता के द्वार खुलते हैं एवरी डे। कई ऐसे क्षण होते हैं हम खो देते हैं, क्योंकि हम बस उस एक अपनी सीमा से हम असीम को माप रहे हैं और अपनी सीमा के ही तोल में देख रहे हैं। तो शेरविंद की समस्या, मतलब हमारी समझ की समस्या ये है कि हम लोग ये कौन सा वेदांत है, ये अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, तंत्र है, क्या है। शेरविंद स्वयं क्या लिखते हैं, वो कहते हैं, आई एम नीदर ए ज्ञानी नॉर ए भक्ता, भक्त नहीं मैं, ना मैं ज्ञानी। कहते कौन है आप? आई एम ए लीफ ड्रिवन बाय द लॉर्ड। अब ये परिभाषा योग की कहीं पढ़ी है? केवल उन्हें दिया, माने तो पूरे दिनचर्या अगर आप देखेंगे सुबह से लेकर के हर चीज के अंदर, उन्हें एक चीज अगर उनसे सीख सकते हैं हम तो वो है व्हाट इट मींस टू गिव वन सेल्फ। और उनको पता है हम कितने तैयार हैं नहीं तैयार हैं। तो प्यास, लेकिन अंततः क्या होता था, जब प्यास नहीं होती है तो हम क्या पूछते थे? अब देखिए दो कंट्रास्टिंग चीज। एक व्यक्ति चिट्ठी लिखता है श्री अरविंद को, सर मेरे पास, मुझे एक टाइम पीस चाहिए, मेरे पास इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। तो श्री अरविंद, सर आई वांट ए टाइम पीस। श्री अरविंद लिखते हैं, हाउ अबाउट टाइमलेस पीस। सहाना दी लिखती हैं। अब देखिए, लेकिन संबंध देखिए, गुरु के साथ कैसा संबंध होता है। आमतौर पर क्या संबंध होता है, गुरु से आपने ज्ञान सीख लिया, बाकी तुम व्यवहारिक जीवन अपने अपने हिसाब से जी रहे हो, कर्मों के अनुसार आपका चक्र चलता रहेगा। आप गुरु से अगर पूछेंगे मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, वो एक जनरल प्रिंसिपल बता देंगे, वेजिटेरियन खाओ या ये खाओ वो खाओ, और अलग अलग उत्तर आते हैं श्री अरविंद के साथ। सहाना दी लिखती हैं कि यू नो लॉर्ड व्हाट, आई हैव ए स्ट्रांग डिजायर टू ईट मीट, क्रैब, लॉबस्टर, फिश। ये नहीं कि जज करेंगे, हे पापिन तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी इच्छा। शेरविंद लिखते हैं, ईट योर डिजायर। अब ये देखिए, ये किस भूमि पर ये योग हो रहा है, ये कैसा इंस्ट्रक्शन है। वहीं किसी और को, मां बिल्कुल, इसके एक सज्जन मुझे मिले, वो उन्होंने बताया कि माँ उनको रोज एक अंडा, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर थे, माँ ने बालकनी दर्शन में नोट किया और अलग से बुला करके उनको, ये ही इज वेरी वीक, वहां से देख करके। तो माँ ने ये भी कहा और भी कई चीजें। तो सत्य की जो खोज होती है बहुत विशाल भूमि है, इसीलिए हमको अपने पूर्वाग्रहों से निकलना होता है। अगर पूर्वाग्रह रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस कारण थर्स्ट, प्यास, जो हम जानते हैं उससे यदि हम संतुष्ट हो गए तो आगे ज्ञान नहीं आएगा। और वहां पर आती है प्रश्न का औचित्य। प्रश्न का अर्थ है क्वेस्ट, उससे क्वेश्चन आए। ये एक स्वीकृति है कि मुझे बहुत कुछ है जो जानना है, अभी हम सब नहीं जानते, और उस क्वेस्ट से फिर उत्तर आते हैं। तो प्यास पहली चीज, तो हमको वो प्यासी नदी बनना है जो कितना भी हो वो और जितना हम, माँ यहां तक कहती हैं यदि तुम्हारे अंदर प्यास है तो आगे जो कहती हैं वो आश्चर्यचकित कर देगा। यदि तुम्हारे अंदर प्यास है तो इवन द एक्स्ट्रा वेगेंजेस ऑफ एन अमेरिकन यूथ आर ए पाथ। ये कौन से यूथ थे जो ये बाइकर जैसे होते हैं ना, तो अमेरिका में एक प्रचलन, अब तो यहां उसका वो एक्स्ट्रावेगेंजा निकल गए मोटरसाइकिल लेकर के, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, लाइफस्टाइल हो गया। तो आप कहेंगे ये देखो जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन माँ कहती है यदि तुम्हारे अंदर प्यास है तो क्या, कहाँ भटक रहे हैं वो, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्यों, डीप इनसाइड वो कुछ खोज रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब कौन जाने किसके अंदर वो प्यास हो। तो ये देखिए कितनी गहरी भूमि पर, अगर एस्पिरेशन नहीं है, पूरे जीवन हम भगवान के बगल में बैठे हैं। शेरविन से किसी ने पूछा था कि सर हमने सुना है जो आपके बिल्कुल करीब हैं सबसे पहले उनका रूपांतरण होने वाला है। शेरविन कहते हैं यदि ऐसा है तो मेरे टेबल का और टेबल पर जो वो वुड का पीस है जिसको मैं उपयोग करता हूं हाथ से, सबसे पहले तो उसका रूपांतरण होगा ह्यूमरसली। अब देखिए पूर्वाग्रह है ना हमारे सारे, तो ये कोई पूर्वाग्रह नहीं। सत्य की खोज तो वैसे ही होती है, जितने विशाल, जितने हमारे ओपननेस, व्हाट इज ओपननेस टू रिसीव एनी विच वे द डिवाइन कम्स। लेकिन उसके वो प्यास के साथ में दूसरी चीज ये है कि कोई भी कोका कोला से, अरे प्यास तुम्हें प्यास लगी है, लो भाई कोका कोला पी लो। वहां पर एक छोटी सी हमारे उसमें दोहे होते हैं ना, उसमें एक सिंह के बारे में कहा जाता है, चातक के बारे में भी कहा जाता है। सिंह के बारे में कहा जाता है कि उसको 7 दिन भूखा मर जाएगा शेर, लेकिन वो घास नहीं खाएगा, है ना, सुनी होगी, भूख मरे दिन 7 लो, सिंह घास नहीं खाए। और चातक के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी चिड़िया है जो प्रतीक्षा करती है स्वाति नक्षत्र की, बड़ा रेयर है 2.5 मिनट का। और उसमें जो गिरता है ना बूंदे, फर्स्ट ड्रॉप्स, वो उसको नरिश करती हैं। तो प्यास का ये नहीं अर्थ है कि हम इधर उधर जाके दुनिया भर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हैं। प्यास इंफॉर्मेशन से कभी नहीं बुझती है। प्यास तो जब शुद्ध गंगा जल, उससे ही बुझती है। तो वो प्यास अगर होगी तो अपने आप सारी चीजें हमको समझ भी आएंगी, क्योंकि हम समझना चाहते हैं, प्यास का अर्थ ही है। और दूसरी चीज जो इस योग में शेरविन बताते हैं, ऑलरेडी हमने पूर्वाग्रह की बात हुई, माता जी कहते हैं डू नॉट क्लिंग। अब किन चीजों से हम जुड़े होते हैं, बात केवल यहां वृत्तियों की नहीं होती, अपनी विचारधाराओं से, अपनी थिंकिंग प्रोसेस से, हम जो हैं, जिस परिवेश में बड़े हुए, जो हमने सीखा बचपन से, उसी को हम सच समझते हैं। वो एक आवश्यक होता है एक समय के लिए। जैसे एक प्रश्न आता है कई बार, लोग पूछते हैं उससे कि हमारी बेटी विवाह नहीं करना चाहती, बेटों का भी हो गया है प्रचलन आजकल, तो वो चाहते हैं कि मैं समझाऊं, ये साइकेट्रिस्ट वाला रोल। तो मैं माता पिता को बुलाता हूँ अलग से, पूछता हूँ आप खुश हैं विवाह करके? अब चुप हो जाते हैं, पता है हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। लेकिन खुद को उड़ाने का ख्याल अच्छा है। आई एम मॉडिफाइड दिस शेर, सॉरी सॉरी गालिब जी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब की ख्याल अच्छा है। दैट द शेर, जस्ट टू पुट इट इन कंटेक्स्ट। मैंने हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खुद को उड़ाने का ख्याल अच्छा है। समझ गए होंगे, समझने वाले। मतलब जीवन आपका इतना दुखी है कि आप उसमें भी एक, तो ये जो है डू नॉट क्लिंग। कुछ हमने सीख लिया तो हम जान गए। पूरी ईश उपनिषद का यही तो है कि ज्ञानी का लक्षण क्या होता है, अविज्ञातम विजानता अविज्ञातम अविजानता। जो सोचता है कि मैं जान गया तो वो नहीं जानता। इसलिए जब अमित बार बार मुझे आचार्य आचार्य कह रहे थे तो मैं जरा घबरा रहा था कि कहाँ रोक दिया मुझे, बच्चा रहने दो। नहीं, आप बहुत आदर से कह रहे थे, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन बच्चे की यही, माँ का बच्चा, बच्चे का अर्थ क्या होता है? बच्चा जीवन को सदैव वंडर से देखता है। बच्चा कभी ये उसके पूर्वाग्रह नहीं होते हैं। माता पिता डाल देते हैं उसके अंदर पूर्वाग्रह, बाद में उनको छोड़ना बहुत कठिन होता है। बहुत सारे पूर्वाग्रह होते हैं। तो आचार्य तो फिर बड़े, माने थोड़ा बिहेव करना पड़ता है ना आचार्य लाइक, आई डोंट नो। अब ऐसी मेरी तो दाढ़ी मूछ भी नहीं है तो आचार्य की कैटेगरी में तो आऊंगा नहीं। लेकिन कहने का अर्थ ये है, नहीं अच्छी बात है, कहने का अर्थ ये है कि हमें उस अवस्था में पहुंचना है जहां हम ये कह सकें कि सच में, इसको ही विनम्रता कहा गया, ह्यूमिलिटी, दैट बिफोर द डिवाइन आई एम नथिंग, आई नो नथिंग। तो अब भगवान आपको कहां से नहीं बताएगा, किताब से नहीं, हर चीज से बताएगा। आप रस्ते में जा रहे हैं, कोई दृश्य देखेंगे, वहां से बताएगा। कितनी सारी चीजें बदलती हैं उनसे बताएगा, पुष्पों से बताएगा। मतलब वो सर्वत्र है, हर चीज से। किसी व्यक्ति से आपका इंटरेक्शन हुआ 5 मिनट का, उससे बताएगा। तो ये सारी चीजें, पूरी कचौड़ी खा रहे हैं उसमें आपको ज्ञान आएगा। एवरीथिंग वेयर देयर इज ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द डिवाइन गोइंग ऑन। तो डू नॉट क्लिंग किसी भी आइडिया को। हम क्लिंग करते हैं कि, और हम ये मान के चलते हैं कि मैं सही हूं। आपको एक उदाहरण देता हूं, आश्रम के कंटेक्स्ट का उदाहरण है। किसी ने मां से पूछा, ये डॉक्यूमेंटेड है 1957 की, आई थिंक इट इज फरवरी या जून का अनुभव माता जी की, या जुलाई का है वो 57 में। माता जी से किसी ने पूछा कि आश्रम अब वो पहले वाला आश्रम नहीं रहा, आधार क्या है? कहते हैं देखिए पहले कितना शांत रहता था। पुराने समय के लोगों की यही समस्या है। तो कहते पहले कितना शांत था वातावरण, अब देखिए यहाँ लोग आते हैं, चीख ये सब, कौन कौन आ गया आश्रम से। पुराने समय के लोग बड़े टची हो गए थे वो, कभी कभी ये भी, ये बाहर वाले लोग नहीं होना चाहिए। अब बोल बोल के आप कि भाई हमको सब में भगवान देखना है, ये तो बेसिक स्टेप है योग का। खैर ये होती है एक वृत्ति, क्योंकि पीपल मिसअंडरस्टैंड एक सत्य को। सत्य क्या है कि आपको अपने अंतर्मुखी होना, ये नहीं कि आप जस्ट किसी से भी कैसे भी फ्री मिक्सिंग कर रहे हो नेचुरली, फिर तो आप कोका कोला ये सब आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो लेकिन उसका जो विकृत रूप है वो ये हो जाता है। तो मां से किसी ने पूछा कि जनरल लेवल ऑफ आश्रम हैज गॉन डाउन, व्हाई? मां ने क्या सुंदर उत्तर दिया है। मां कहती थी कि ये पहले, ये जनरल लेवल नहीं गिरा है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए उसको थोड़ा कठिनाई हो रही है। अब मां उसको एक्सप्लेन करती हैं, और वहां से इस योग का आज का जो मुख्य सूत्र है उससे हम लोग रुकेंगे। तो मां कहती हैं कि पहले क्या था कि आश्रम को हम, मैंने हर एक साधक को एक इंडिविजुअली आइसोलेट करके रखा था कुकून के अंदर। आप देखेंगे उस समय की बातें, लोग एक, मतलब क्लासिक जो है, अमृतदा और नलनीदा अगल बगल रहते थे, बाहर निकले दोनों घने मित्र, लेकिन व्यवहार नलनीदा एकदम सीरियस, सबके प्रति नहीं थे, बच्चों के प्रति बड़े आराम से खोल देते, लेकिन अगर कोई और आ जाए किया चे क्लोज द डोर. ही कुड सेंस कि भाई ये क्यों आया है, व्यर्थ की चिट चैट के लिए. वही अमृतदा का भक्त है, हाय बाय क्या है. उनके तो एक से एक जोक फेमस है कि वो जब आश्रम के अंदर जा रहे हैं तो अचानक एक महिला बाहर आ रही थी, दोनों का टकराव हो गया, तो उस महिला ने इंस्टिंक्टिवली बोला आई एम सॉरी, तो अमृता कहते बट आई एम नॉट. आप बोलिए ये सेंस ऑफ ह्यूमर, बट आई एम नॉट. तो ये जो ये अब उस समय एक समय था जब इंडिविजुअल्स कुकून में रहते थे. माँ कहती है लेकिन 1956 के बाद अब क्या किया है उन्होंने, उन्होंने वो कुकून हट गया है क्योंकि योग ने एक नया रूप ले लिया है. अब वो कहती है कि मैंने क्या किया है कि जो भी श्री अरविंद के टीचिंग्स की ओर मुड़े हैं, और फिर आगे कहती है दोज हु हैव डिक्लेयर्ड इन देयर कॉन्शियसनेस दैट दे आर इंटेलेक्चुअल डिसाइपल्स ऑफ श्री अरविंद. आप देखिए कंडीशन कहां पर ले आई मां, कि हमको श्री अरविंद ही भाते हैं, उनकी राइटिंग्स, तो इंटेलेक्चुअल डिसाइपल्स, उन सबको मैंने एक सूत्र में बांध दिया है. अब देखिए कोई व्यक्ति पांडिचेरी आश्रम में है, कोई कहीं और है, दिल्ली में है, कोई रशिया में है, कोई अमेरिका में है, और माँ कहती हैं कि ये वो नहीं कि केवल जो पांडिचेरी में, वो स्पष्ट करती हैं जहां भी हैं उनको मैंने एक सूत्र में बांध दिया है. तो अब क्या हो रहा है, उसके प्रभाव के कारण जो जनरल मास है वो ऊपर उठ रही है, लेकिन इंडिविजुअल अब चूंकि बंध गया है एक सूत्र में, वो जो इंडिविजुअल प्रोग्रेस एक प्रकार से होती थी वो संभव नहीं है. फिर मां बताती हैं, आप समझ आया कि मैंने कलेक्टिव मेडिटेशन क्यों रखा है, वो बाद में उसका कारण बताती हैं. तो 56 के बाद, क्योंकि कल हमारा विषय मुख्य वहीं से है, बहुत चीजें इस योग में बदली हैं. मुख्य फंडामेंटल्स हमेशा सेम है, जो इसका मेन फंडामेंटल है जहां से नाम हम लोगों ने पिकअप किया मदर्स योगा, माँ के प्रति खुलना ही योग है. शेरविंद ने एक वाक्य में लिखा है ऑल हु आर ओपन टू द मदर आर डूइंग माई योग, वेरी सिंपल. अब लोग भी एक से एक डिसाइपल थे, तो एक डिसाइपल उनसे कहता है कि आप और मदर एक ही हैं. अब देखिए कैसे ट्विस्टेड माइंड्स हैं, ट्विस्ट करके पूछ रहे हैं, आप और माँ तो एक ही हैं, तो यदि आपके प्रति मैं खुला तो मतलब मैं ऑटोमेटिकली खुल गया माँ के प्रति, और माँ के प्रति खुला तो ऑटोमेटिकली आपके प्रति खुल गया. श्री अरविंद का उत्तर चौंकाने वाला है, कहते हैं द मदर प्रपोजिशन इज ट्रू. वो सही है कि माँ की ओर खुले तो मेरे प्रति खुल गए हो, बट अब आगे बताते हैं इफ ओनली यू ओपन टुवर्ड्स मी यू विल नॉट रिसीव द फुलनेस ऑफ द फोर्स. फिर वो कहते हैं देर इज ओनली वन फोर्स विच इज द मदर्स फोर्स, और यू कैन से दैट द मदर इज श्योर विंदोज फोर्स. इसलिए आप देखें कि हर जगह माँ श्री अरविंद के राइट में बैठती हैं, मतलब वो फोटोग्राफ्स में, क्योंकि दर्शन डे में श्री अरविंद ने माता जी को अपने दाहिनी तरफ बैठी हैं. दर्शन डे में आप देखेंगे जो पहला दर्शन था, जो 24 नवंबर का जो सिद्धि डे का है, तो श्री अरविंद सोफा पर बैठे थे और माँ एक बगल में स्टूल पर बैठी थी राइट साइड में. और माँ बताती हैं ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि मेरा दाहिना हाथ फ्री होना चाहिए देने के लिए सबको. तो श्री अरविंद माँ के अंदर दे रहे हैं जो देना है, और माता जी सबको दे रही हैं, तो मदर्स योग. तो ये 1956 के बाद ये योग ने एक वो कठिनाइयां जो जीवन में एक समय तक नहीं ली गई थी, एक टाइम तो आएगा ना जब योग में आप हर जीवन की समस्या को आप निषेध करके नहीं रख सकते, जो भी रूपांतरित हो सकती है आप उसको इंक्लूड करोगे योग में, तो उन समस्याओं को भी उन्होंने लिया. अब माँ उसको हिंट करती हैं 1951 में, 51 या 52 की बात है, जब बच्चे आना शुरू हो गए. बच्चे क्यों आए, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उनके पेरेंट्स आए. माँ कहती हैं वर्ल्ड वार ने मेरे द्वार पे एक पैकेट रख के चला गया, और खूब सारे बच्चे आए थे पेरेंट्स बचने के लिए, तो पेरेंट्स भी आए, वो कोई जरूरी नहीं कि योग करने आए थे. फिर और कौन आया, शिक्षक आए, कि हम पढ़ाएंगे सेंटर ऑफ एजुकेशन में, वो भी नहीं योग की दृष्टि से आए थे। तो अब ये सारे जो आए तो उसके बाद आप देखेंगे सेंटर ऑफ एजुकेशन के एक लीफलेट में वॉल्यूम 12 में पेज 49 पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एन एडवाइस टू न्यू कमर्स। ये खासकर जो सेंटर्स में हम लोग काम करते हैं वहां ये बहुत आवश्यक है, आश्रम में भी आवश्यक है। एक समय प्रणब दा ये हैंडआउट पकड़ा देते थे कोई जब आता था, एन एडवाइस टू न्यू कमर्स। तो कहते जब हम प्रारंभ में योग में आते हैं तो हम बड़ी चैत्य हमारा खुला होता है, तो हमको सब अच्छा लगता है, डाइनिंग रूम का खाना खा के आह स्वर्ग का खाना है, किसी से भी मिलते हैं वो भगवान है स्वयं, संत पुरुष है, हम सब के अंदर एक एक ऐसा वो क्यों लग रहा है, चैत्य सब में भगवान को देखता है। बात ये नहीं कि वो व्यक्ति कैसा है क्या है, और सच बात है कि अगर आप गहराई में किसी को भी देखो तो वो भगवान है, तो हमारी दृष्टि की सीमा है। कहते हैं लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि ये पुरानी प्रकृति बाहर आ जाती है। अब पुरानी प्रकृति क्या कहती है, ये ऐसा है वो वैसा है, क्यों कहती है, कंफर्ट चाहिए ना आपको। अब दो तरीके हैं आपको खुद को कंफर्टेबल फील करने के लिए, या तो मैं सबसे बड़ा हूं या दूसरे मेरे से छोटे हैं। तो एक क्रिटिकल माइंड है, ओवर एक्टिव हो जाता है। तो वहां पर फिर माँ बताती हैं कि इसकी रेमेडी क्या है, ये भी बताती हैं, कहती वापस अपनी चैत्य सत्ता से कनेक्ट करो, दैट इज द रेमेडी। तो जब उस दृष्टि से हम देखते हैं तो ये एक अब, और ये और होगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग आना प्रारंभ हो गए हैं, और उस समय इस तरह की चीजें, अब नेचुरली फैमिलीज आई, तो जो आश्रम में बहुत सारे स्ट्रिक्ट नियम सो कॉल्ड, वो नियम वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो आश्रम का हिस्सा बन गई। फिर माँ कहती है हमने ये समस्या जो है परिवार की प्री मेच्योरली ले ली अपने ऊपर, लेकिन आज नहीं तो कल इसको लेना तो था इस समस्या को भी। फिर वो कहती हैं कि इसके कारण हम 30 वर्ष पीछे चले गए, खुद कह रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो रियलाइजेशन होगा वो ज्यादा कंप्लीट होगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे सूत्र आ गए योग के। पहला, ये एक कलेक्टिव योग है, ये वाला वो वाला योग नहीं है कि बस मैं अकेले बैठ करके ध्यान करूं, आपकी वृत्ति है जरूर करिए, कोई ये नहीं है कि ये नहीं है या वो है, किंतु ये एक कलेक्टिव योग है। इसमें हम संसार से कटते नहीं हैं, लेकिन ईश्वर, ये अभी हम संसार से ईगो के माध्यम से जुड़े हैं, घटनाओं का मूल्यांकन वैसे करते हैं, अब हम इसको रीओरियंट अपने आप को करते हैं, भगवान की दृष्टि में ये चीजें कैसी हैं भगवान की दृष्टि से देखना प्रारंभ करते हैं। तो इट इज रीओरियंटिंग आवर सेल्फ, रीकनेक्टिंग विद लाइफ, यानी इसकी तीन स्टेजेस हैं इस योग की। नलिनीदा की एक बड़ी सुंदर एक छोटी सी राइटिंग है, टू लव मैन, क्योंकि ये आता है ना कि भाई हम भगवान से प्रेम करेंगे तो मनुष्य से नहीं कर सकते, बहुत ही एक विरोधाभास ये सब आते हैं ना, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि पहली स्टेज है जब हम मनुष्य को प्रेम करते हैं इग्नोरेंटली करते हैं। इग्नोरेंटली क्या, लेन देन मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, जो आपको बोलेगा आप बहुत अच्छे हो, हाँ देखिए वो कितना अच्छा आदमी है, और जो आपको कह देगा कि राजा आपने तो वस्त्र नहीं पहने, सबसे खराब यही आदमी है, है ना, फ्लैटरर्स, जो फ्लैटरर्स को पास रखे उससे दूर रहिए। ये नॉर्मली यही करते हैं ना हम, फ्लैटरर्स बहुत अच्छे लोग होते हैं, और जो आपको क्रिटिसाइज करे वो हमें पसंद नहीं है, नॉर्मली ये होती है। तो ये संसार के साथ एक ईगो का बेस्ड रिलेशन है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, उनसे हम जुड़े हुए हैं, क्यों, हमारी फिजिकल बीइंग उनसे जुड़ी हुई है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है जब हम नैरो डाउन करते हैं, नैरोइंग होती है चेतना की, उसमें हम जुड़ना केवल और केवल भगवान से चाहते हैं, उसमें ये स्टेज आती है कि हम संसार के जो नॉर्मल हमारे संबंध हैं उसमें उचट जाता है मन, वो एक डिसएंगेज हो जाता है जीवन से, सॉलिट्यूड प्रिय हो जाता है, उन चीज़ों से जिनसे हम ऑर्डिनरीली जुड़े थे वो नहीं जुड़ पाते हैं। ये कई लोग इससे गुजर चुके होंगे और कई गुजर रहे होंगे, तो उस समय आप कई लोगों को ये डिसकनेक्टेड से हैं, उखड़े उखड़े से हैं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आपके अंदर क्या हो रहा है। पर तीसरी स्टेज है जब आप फिर से एक वाइडनेस में प्रवेश करते हो, लेकिन अब आप संसार के साथ रीओरियंट कर रहे हो। तो ये जो चीज अब योग की हो रही है, अब जो अवस्था है वो रीओरियंट, कलेक्टिव योग तब प्रारंभ होता है रियल सेंस में जब हम एक नई भूमि पर संसार से जुड़ते हैं। ओल्ड भूमि पर जुड़े रहना कि कलेक्टिव योग है तो हम चलो हा हा ही करके खूब एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि कलेक्टिव योग है, पार्टी कर रहे हैं, नहीं वो तो फिर आप धोखा दे रहे हैं हम खुद को, और खुद को अगर हम धोखा दे रहे हैं तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है, हमारा हो रहा है। लेकिन रीओरियंट की हर चीज को हम अगर भगवान की दृष्टि से देखेंगे और जुड़ना चाहेंगे उस दृष्टि से, तो वो एक रीओरियंटिंग है, वो कलेक्टिव योग का रियल प्रारंभ। पहले एक इंडिविजुअल योग करता है और प्रयास करता है कम से कम मिनिमम अपने अंदर चैत्य सत्ता को, जो हमारे अंदर मोस्ट ईजिएस्ट, लेकिन उसको प्राप्ति के लिए भी जो पहली कंडीशन थी पूर्वाग्रहों से मुक्ति, माँ बड़े सुंदर ढंग से कहती है कि तुम्हें अपने अंदर उसको खोजना है जो किसी देश काल परिस्थिति से सीमित नहीं है। देखिए देश काल परिस्थिति से हम सीमित होते हैं, तो चैत्य सत्ता, पहले हमको यह जानना है कि माइंड कैन नॉट जज स्पिरिचुअल थिंग्स। जगह जगह माँ बताती हैं कि हम क्या होता है कि बाहर से देखकर, वेशभूषा देखकर, जीवन शैली देखकर बाहर से हम जज करते हैं, तो माइंड कैन नॉट जज स्पिरिचुअल थिंग्स। ये कहना किसके अंदर प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, हाउ डू वी नो, वी हैव नो क्लू अबाउट इट, और ये काम भी नहीं है। तो हमारा काम क्या है, अपने अंदर ये कार्य करते जाना है, माँ को करने देना, खुला करना। तो ये कलेक्टिव योग है, पहली चीज यहाँ पर हम सब एक दूसरे से एक डीपर स्रोत से जुड़े हैं। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल जिसके साथ मे बी वी कैन प्रोबली, आई डोंट नो टाइम लिमिट, हाँ 5-1 मिनट देन वी कैन स्टॉप। अब इसको एक सिंपल एग्जाम्पल, अभी हम लोग मुड़े हैं, कई लोग कई बार होता है ना परिचय होता है, अपना नाम बताते हैं लोग, पता नहीं क्यों होता है, क्योंकि मैं तो कितनी बार बता दो भूल जाऊंगा, अब ये भूलने की बीमारी है, मेरे को नहीं याद रहता है नाम, तो बाद में कोई, और खासकर जब कोई फोन पर पूछे पहचाना मुझे कहता भैया खुद को ही नहीं पहचानू, आवाज सुन के कहीं प्ले कर रही है तो मुझे लगता है सुनी सुनी आवाज है। अब लोगों को लगता है बहुत इंपॉर्टेंस, सेल्फ इंपॉर्टेंस होती है, भैया हमें पहचाना, अब आप क्या बोलोगे, भाई नहीं पहचाना, आप मिल चुके हो, परिचित हो, लेकिन वो परिचय अलग भूमि पर है। ये लोग नहीं समझ पाते कि ये परिचय आपके नाम से, आपकी पहचान से, आपका बाहरी उससे नहीं है, आपके विजिटिंग कार्ड से नहीं है परिचय, ये परिचय की भूमि अलग है, बड़े अपने हैं लेकिन उस अपने का कोई नाम नहीं है। अब ये एक भूमि है जिसमें हम सब अभी मिल रहे हैं, अधिकांश को पता नहीं होगा, एक पता भी होगा, मुझे नहीं पता है, सब परिचित हैं लेकिन कहाँ से आए हैं, क्या भाषा है, कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, कौन से ये सब नहीं मालूम पड़ता ना, लेकिन कितना अच्छा है ना, कितना हम लोग स्माइल के साथ एक दूसरे से जुड़े हैं। अब सीन चेंज कर दीजिए, यही अब समझिए, इसमें से हम लोग बात करने लगे शेयर मार्केट के भाव क्या चल रहे हैं, उसके बाद ये प्रारंभ हो जाए कि अच्छा तुम भी हो इसमें रियल एस्टेट में, बिजनेस में, मुझे भी एक घर बनाना है, तो लेट्स फॉर्म ए पार्टनरशिप एंड मेक ए हाउस टुगेदर। अब देखिए क्या समस्या शुरू होगी, एक तो सबसे पहले आपने प्रिज्यूम कर लिया कि चूंकि वो भी डिवोटी है बड़ा ईमानदार होगा, प्लीज डोंट प्रिज्यूम एनीथिंग, ये हो चुका है, नहीं ये बताना, पीपल राइट लेटर्स। अब आपको मैं रियल बता रहा हूं कि शेयरविंद के समय की बात है, खैर नाम नहीं लेना चाहिए, वो जो वो जाके लोग, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया लोगों से शेयरविंद के नाम पर कि शेयरविंद ने मुझे ऑथराइज किया है, लोगों ने भरपूर चंदा दिया, लेके भाग गया तो लोगों ने शेयरविंद से कहा कि भाई ऐसे से हुआ, तो शेरविंद ने कहा तुमने चंदा क्यों दिया, मैंने तो कोई ऑथराइजेशन ना पत्र दिया ना कहा किसी को, नहीं नहीं आप उसको इतना समय देते थे ये हमें पता है, कभी कभी 45 मिनट तक वो आपके पास बैठा है, तो हमको लगा कि आपका बड़ा करीबी होगा, तो शेरविंद ने उसके बाद जो कहा है वो अब पब्लिश लेटर है, तो कह सकते हैं किशोर गांधी को नल्ली दा ने उसको पब्लिश कर, तो वो पब्लिश्ड है, कहते हैं ये तुमने कैसे अनुमान लगा लिया, बहुत हैं लोग जो बहुत बड़े बड़े असुर हैं जिनको मैंने अपने पास रखा है, रुके नहीं वहां पे, आगे भी कह दिया भोले बाबा ने, भोले बाबा ही कहेंगे ना, भगवान शिव की बारात कहते हैं ना, कहते हैं द ग्रेटर द डिसाइपल द ग्रेटर द असुर, अब बोलिए अब तो कहते हैं सर इफ यू राइट लाइक दिस हु विल गिव डोनेशन जेन्युइनली, अगर हम पूछेंगे अब देखिए सारे पूर्वाग्रह है ना कि हम डिसाइपल कौन है, कितना बड़ा है, कैसे हम क्या जानते हैं। ये जितने भी ये दिमाग के अंदर कीड़े हैं ना, जो कॉन्स्टेंटली जज करता है, और माँ क्या कहती है, द माइंड कैन नॉट जज स्पिरिचुअल थिंग्स। ऐसा नहीं कि नजदीकी ज्यादा भगवान के साथ, ये सब सत्य है, लेकिन जिस आधार पर हम जज करते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि हमारा आधार अज्ञान का है। ज्ञान की भूमि से वो चक्षु देखेंगे, बिल्कुल अलग देखेंगे। श्री अरविंद किसी को इंटरव्यू नहीं देते थे एक समय, गांधी जी को तो उन्होंने दो बार तो निश्चित रूप से रिक्वेस्ट की, लोगों ने उन्होंने मना कर दिया। कारण उन्होंने जो बताया वो एक अलग बात है, मना कर दिया। टैगोर को उन्होंने आने दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उस समय जब श्री अरविंद किसी को नहीं देखते थे सिवाय अपने डिसाइपल्स के, गांधी जी को तो यही उन्होंने कहा ना कि भाई मैंने एक नियम बनाया है कि मैं केवल अपने जो मुझ पर आश्रित है उन्हीं को देखूंगा, डिसाइपल्स, तो मैं ये नियम नहीं तोड़ सकता हूं, दर्शन दिवस पे तुम आ सकते हो। गांधी जी तो खुद दर्शन अभिलाषी, खुद के दर्शनों की वो कहां से आएंगे, सॉरी जी कहना पड़ रहा है तो फिर वो लेकिन जब के एम मुंशी आते हैं 1949 में, श्री अरविंद उनको इंटरव्यू देते हैं। देखिए बात कहां से प्रारंभ हुई थी वहीं पर समाप्त होगी। उन्होंने, के एम मुंशी ने पूछा, बंटवारा हो गया था, कहा ये क्या हो गया, इसका कुछ होगा निदान है, आपने तो मैसेज में लिख दिया इंडिपेंडेंस डे के, बाई वट एवर मीन्स द डिवीजन मस्ट एंड विल गो, केवल मस्ट नहीं कहा एंड विल गो, तो बाई वट एवर मीन्स। तो श्री अरविंद से उन्होंने पूछा, सर एक प्रश्न है, ये बंटवारा तो हो गया, अब क्या होगा। तो श्री अरविंद का वाक्य है, पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड बाई फॉल्सहुड, फार्स एंड फोर्स, इट मस्ट यूनाइट विद इंडिया इवन इफ इट इज थ्रू अ वार। अब वो खुद ही वार लड़ रहे हैं, मतलब वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे एक कर लो। युद्ध किसके साथ हम करते हैं, जिसे अट्रैक्शन, जिसे सीक्रेट अट्रैक्शन कहते हैं ना। कोई व्यक्ति अगर आपको घृणा कर रहा है तो कभी मत समझिए कि वो बुरा व्यक्ति है, मतलब वो आपसे बहुत प्रेम करता है। ये एक आप, ये वैसे मैं एक ट्रू साइकोलॉजी बता रहा हूं। आप किसी से घृणा करते हो ना तो इसका मतलब आप प्रेम करते हो, आपकी अपेक्षाएं हैं, तो आप बार बार आ रहे हो दरवाजे पर ये कहने को कि मैं तुमसे घृणा करता हूं। तो लक्षण क्या होता है कि वो आपसे प्रेम नहीं करता, जब इंडिफरेंट हो जाएगा। तभी तो लोग कहते हैं ना बड़े फेमस इसके बारे में कि भाई क्रोध ही कर लो, चुप ना रहो। चुप्पी से डर लगता है, क्रोध से नहीं। तो इट्स ए साइन ऑफ वांटिंग टू यूनाइट। सही बोल रहा हूं ना वैसे। इट्स ए साइन दैट यू वांट टू ज्वाइन, तभी आप क्रोध कर रहे हो। जब आपका क्रोध समाप्त हो गया, घृणा समाप्त हो गई, तो मतलब आप कुछ बचा नहीं, नाउ यू आर ए क्लीन स्लेट। ये हम लोग साइकोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं कि हाउ टू नो कि भाई आपका जो ब्रेकअप हुआ या जो भी हुआ, आपने इमोशनली उससे फ्री हो गए हो। जब आप उससे फ्रीली मिल सकते हो विदाउट एनी रिएक्शन और रिस्पॉन्स, और तब बाय द वे चूंकि इसकी बात हो रही है, देन यू फॉर्म ए वेरी गुड बॉन्ड, क्योंकि वो बॉन्ड मित्रता की बॉन्ड होती है, उसमें ना आपकी अपेक्षा है ना दूसरे की, लेकिन वो अलग विषय है, हम लोग विषय अंतरण नहीं करेंगे। तो ये जो योग है, ये अंत में तीसरी चीज जो मुख्य है, इट इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। शेरु ने स्वयं कहा है प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, इसको कोई एक तरीके से नहीं किया जाता है, इसमें हमको अपने ही अंदर एक एक चीज को, भाव को, विचारों को, मोटिव्स को, माने पहला स्टेप बताया बिकम कॉन्शियस, मोटिव्स को पकड़ना होता है, छिपे होते हैं परतों के अंदर। बात हुई ना सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ, ऐसा क्यों कहा, बहुत सारे जो सत्य है छिपा होता है परतों में, जो परतें थोड़ी बदसूरत सी है उसको तो हम लोग निकाल देते हैं, ये सच नहीं है, कुछ परतें बड़ी चमकीली होती हैं। मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, देखिए श्री अरविंद ने क्या कहा है, एक अफोरिज्म है उनकी, भगवान आए, और ये कार्य हो रहा है आज जगत में, भगवान आए और उन्होंने मुझसे मेरा पाप का वस्त्र छीना, मैंने खुशी खुशी जाने दिया, हा फिर आए, ठहर, अब क्या चाहिए प्रभु, देखिए पाप मेरे धुल गए, अभी तुझसे मैं पुण्य का, वर्चूस का यह वस्त्र भी उतारना चाहता हूं। प्रभु ऐसा मत करो, ये एफरिज्म है उनकी। गॉड केम एंड प्लक्ड माई रोब ऑफ वाइसेस एंड आई लेट इट गो हैप्पीली, देन ही केम व्हेन ही प्लक्ड माई रोब ऑफ वर्चूस देन आई रेजिस्टेड। अब इस पर तो पूरा एक लेक्चर हो सकता है, जब वो वर्चूस, क्योंकि वो भी जो हमारी आइडेंटिटी, असुर या देव उसके परे, तो वो भी जो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है उसके भी परे। अब कृष्ण को क्या कहा, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, वो एक साधु बच्चा बनना चाह रहा है ना, कि देखो मैंने अपने परिवार वालों की बात सुनी, अपने सबका इनके अगेंस्ट नहीं खड़ा हुआ, देखिए श्री कृष्ण मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं। श्री कृष्ण कहते कहां का अच्छा है तू, मेरी बात तो सुन नहीं रहा है। इफ यू लुक एट इट दैट वे, तो रोब ऑफ वर्च्यू, और यही गोपियों के वस्त्र हरण का की कहानी है। और शेरविंद कहते हैं उस पे कमेंट्री में कि गॉड्स प्लकिंग द रोब ऑफ गोपीज, कहते हैं कि जो मिस्टिक है, जो योगी है, वो उसके अंदर एक प्रोफाउंड मिस्टिक सिंबल देख लेता है। मिस्टिक सिंबल उन्होंने बता दिया, लेकिन जिसकी जो सोच है बहुत छोटी है, गंदी है, वो उसमें यही सब देखता है कि ये कोई एक, देखो कैसी कहानी है। फिर वो कहते हैं कि हाँ टेक आउट दी, हाँ गॉड केम एंड प्लक्ड माई रोब ऑफ वर्च्यू, थॉट्स एंड एफोरिज्म वॉल्यूम 10 में है, माँ के वॉल्यूम में ढूंढो तो इजी होगा। तो फिर वो कहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही देखता है वो संसार को। तो यदि हम संसार में सब कुछ नेगेटिव देखते हैं, एक वो कहा है ना कि गाड़ी जा रही है, सामने से यदि सारी व्हीकल्स आ रही हैं, आप सबको गालियां दे रहे हैं कि अरे देखो इसको चलाना नहीं आता, उसको चलाना नहीं आता, इसको चलाना नहीं आता, भाई आप गलत दिशा में जा रहे हो। तो यदि हम सबके अंदर यही देख रहे हैं, बुराई देख रहे हैं, तो शायद हम अपनी अंदर हमारी लिमिटेशंस को नहीं देख पा रहे हैं। और जब हम जितना भगवान के करीब जाने लगते हैं, उतना हम सबके अंदर आनंद, अच्छाई, ईश्वरत्व उसको देखते हैं। अब इसके साथ वी विल रीड दिस एफोरिज्म, वी विल स्टॉप। अब देखिए ये योग कितना भिन्न है, इसको पढ़ें तो पता चलता है कि इट इज नॉट सिंपली जो हम सेंटहुड शेरविन देख जगह लिखते हैं, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट सेंटहुड, एथिकल मैन, वर्चुअस, इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट, सुपरमैन की जो उन्होंने एक्सप्लेन की है। तो यहां पर थॉट्स एंड एफोरिज्म्स हैं, विचार और सूत्रावली। द सीकर आफ्टर डिवाइन नॉलेज फाइंड्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णा स्टीलिंग द रोब्स ऑफ द गोपीज वन ऑफ द डीपेस्ट पैराबल्स ऑफ गॉड्स वेज विद द सोल। द डिवोटी ए परफेक्ट रेंडरिंग इन डिवाइन एक्ट ऑफ हिज हार्ट्स मिस्टिक एक्सपीरियंसेस। The prurient and the puritan, two faces of one temperament. Prurient ko main hindi mein nahi anuvad karunga, har cheez mein wo critical ho raha hai. Puritan, aap dheere dheere har cheez ko eliminate karke ki ye divine hai. Maa kehti hai yadi iske liye bhagwan ne aise socha hota to unhone sansar ki srishti ki rachna hi nahi ki hoti. Puritan wo kya dekhta hai isme, ओनली ए लस्टफुल स्टोरी। मैन ब्रिंग वॉट दे हैव इन themselves एंड सी इट रिफ्लेक्टेड इन द स्क्रिप्चर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। आगे, माई लवर टुक अवे माई रोब ऑफ सिन एंड आई लेट इट फॉल। होता है इस योग में कि आपके अंदर आपको लगता है आप क्या प्रगति हो गई, और लोग कई बार बड़े अति उत्साह में, हमको क्रोध नहीं आता, अगले दिन कोई जलेबी का साइज छोटा हो जाता है और वो सो इट इज टू अर्ली टू रिचॉइस. नल्ली दाने ही तो पूछा था एक और वो साना दिखा दूसरे और भगवान आज नींबू का साइज डाइनिंग रूम में थोड़ा छोटा था, इसके कारण मुझे अंदर से थोड़ी व्यग्रता हुई. हे प्रभु, श्री अरविंद को लिख रहे नलनीदा, आप बुचर के कसाई के छुरी से मेरे अंदर से ये भाग हटा दो. क्या ये नहीं कह रहे कि मुझे नींबू का साइज बड़ा कर दो? वो कंप्लेन नहीं कर रहे, देखो क्या हो गया आश्रम में, नींबू का साइज छोटा हो गया. वो कहते मेरे अंदर ये जो स्पंदन उठाई इसको हटा दो. श्री अरविंद कहते हाँ हाँ हटा दूंगा, लेकिन कसाई की छुरी से क्यों, सर्जन के नाइफ से थोड़ी तो हम मेरी भी इज्जत रख लो. कसाई तो ना बनाओ मुझे, हटा दूंगा मैं, लेकिन सर्जन से यही करते हैं भगवान. बहुत सर्जरी होती है इस योग में और पता भी नहीं चलता, वो इतनी नीट करते हैं. हाथ की सफाई सीखनी है तो मदर शरबिंदो. माई लवर टुक अवे माई रोब ऑफ सिन एंड आई लेट इट फॉल रिजॉइसिंग. देन ही प्लग्ड एट माई रोब ऑफ वर्च्यू बट आई वॉज ashamed एंड alarmed एंड prevented हिम. It was not till he wrested it from me by force that I saw how my soul had been hidden from me. अब देखिए कितनी परतों में सत्य छिपा होता है. My soul had been hidden from me, which is beyond virtue and vice. त्रिगुणातीत की जो बात होती है, माता जी का जो कमेंट है वो तो बहुत ही सुंदर है. छोटा सा देखिए, जहां से प्रारंभ हुआ था वहीं आ गए. सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ, लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ. लेट अस ड्रॉप अवर रोब ऑफ वर्च्यू सो दैट वी मे बी रेडी फॉर द ट्रूथ. शायद आज के परिपेक्ष में जो युद्ध हो रहा है उसमें भी ये बिल्कुल सटीक होगा. लेट अस ड्रॉप अवर रोब ऑफ वर्च्यू सो दैट वी मे बी रेडी फॉर द ट्रूथ. हे माँ, सत्य की विजय हो, तुम्हारी विजय हो. जय माँ.